पुस्तक सातवीं लेक्चर नंबर दो।
ॐ नमः सिद्धेय, ॐ नमः सिद्धेय, ॐ नमः सिद्धेय, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्जायानं, नमो लोये सौवसाहूनं, नमियो नरंतजिनं, अनंतनानेन दिट्ठसौवट्ठं, कम्मपदेशविहत्यं,
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जेढोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक, यहाँ भी प्रदेश विभक्ति अर्थाधिकार चल रहा है अपना, उसमें हम पृष्ठ संख्या चार पर आ गए हैं। फोर, प्रदेश विभक्ति में एक जीव की अपेक्षा काल का प्रकरण चल रहा है, तो उसमें हमने देखा है पहले दो नंबर के पृष्ठ पर हमने देखा था के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव का कितना काल है, तो जघन्य और उत्कृष्ट एक समय, क्योंकि वो सब गुणित कर्मांशिक सातवें नरक के अंतिम समय में उत्कृष्ट होता है, और अनुत्कृष्ट का कितना काल है, तो जघन्य और उत्कृष्ट अनंत काल जितना असंख्या सुगल पर होता है। ये किस अपेक्षा से लिया, एक ही नियम में जाने वाले की अपेक्षा से लिया।
ये उत्कृष्ट योग में रहने का काल दो समय का है मैक्सिमम काल, तो ये दो समय के लिए नहीं हो सकता है,
परंतु अन्य भी उसकी सभी कंडीशंस पूरी होने चाहिए, मात्र बंध की अपेक्षा नहीं है, तीव्र संकलेश है, क्योंकि उस आय और व्यय दोनों का हिसाब करना चाहिए वहां पर, अकेले आय की बात नहीं चलती है,
सत्ता की बात।
तो एक उपदेश है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल है, और दूसरा उपदेश है जगन्य काल असंख्यात लोक प्रमाण है। यह क्षपक की अपेक्षा वर्ष पृथक्त्व प्रमाण काल उन्होंने देखा था। अभी हम आते हैं चार पृष्ठ पर, इसी प्रकार ऊपर एवं शेषाणम कम्माणम नादूण नेदव्यम, इसी प्रकार शेष कर्मों का जानकर ले जाना चाहिए, यानी अन्य में भी जानना चाहिए। खुलासा इस प्रकार है, आठ कषाय और सात नौ कषायों का भंग मिथ्यात्व के समान है, क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट काल की अपेक्षा उसकी बराबर करना, क्योंकि वाला जघन्य और उत्कृष्ट काल की अपेक्षा तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट द्रव्य विशेष की अपेक्षा मिथ्यात्व से इनमें कोई भेद नहीं है, कथन वैसा ही होगा, उनका भी एक समय घटित होगा। अनंतानुबंधी चतुष्क का भी मिथ्यात्व के समान ही भंग है, इतनी विशेषता है इसकी, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। ये अंतर्मूर्त क्यों, दो बार विसंजना के बीच में जितना काल है उसको सत्ता में से नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा
उत्पन्न होता है,
क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके संयुक्त होकर जो अंतर्मूर्त में पुनः इसकी विसंयोजना करता है उसके उक्त काल पाया जाता है। चार संज्वलन और पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, और वो हमने देखा जब अन्य उसमें संक्रमित होते हैं तब लेना। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल अनादि अनंत, अनादि शांत और सादी शांत है। उसमें जो सादी शांत काल है उसकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये अंतर्मूर्त कहाँ कहाँ होगा? प्रेरणा पे। हाँ, उत्कृष्ट के बाद जो अनुत्कृष्ट हो जाएगा शपक श्रेणी में, और फिर उसका क्षय हो जाएगा अंतर्मूर्त। तो अनुत्कृष्ट था शपक श्रेणी, अनुत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। इन्हें शपक श्रेणी में उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होता है तभी। उत्कृष्ट के पश्चात अब स्त्रीवेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल वर्ष पृथक अधिक 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट अनंत काल है। अभी नीचे बताएंगे विशेषार्थ। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का कितना काल है? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट कब याद है?
संकृति तो
मिथ्यात्व की क्षपणा होकर मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व में आते तब
क्षपणा।
इन सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति अपने अपने उत्कृष्ट स्वामित्व के अंतिम समय में होती है, इसलिए यहाँ सबकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। मात्र जिस प्रकृति की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के काल में कुछ विशेषता है उसका यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूल क्यों है? इसके कारण का निर्देश मूल में ही किया है, निर्देश ने कथन। चार संज्वलन और पुरुष वेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति अभव्यों की अपेक्षा अनादि अनंत, भव्यों की अपेक्षा सादी शांत, क्योंकि वो उत्कृष्ट होगा तो उसका अंत हो गया अनुत्कृष्ट का, और क्षपक श्रेणी में सादी शांत कही। क्षपक श्रेणी में इनकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होने के बाद अंतर्मूर्त काल तक अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति संभव है, इसलिए संभव है ने पाई जाती है, इसलिए इनकी सादी शांत अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। स्त्रीवेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति गुणित कर्मांशिक ऐसे जीव के भी होती है जो अंत में पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण आयु के साथ असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों में उत्पन्न होकर आयु के अंतिम समय में स्थित है। वो नपुंसक वेद के लिए, यहाँ स्त्री वेद में तो बहुभूमि की आयु उसमें पल्ले के असंख्यातवे महाकाल तक वो लगातार जीवित का, उसके बाद यह जीव देव होता है और देव पर्याय से आकर ऐसे जीव का वर्ष पृथक्त्व की आयु वाला मनुष्य होकर मोक्ष जाना भी संभव है। देव होता है तो निश्चित है, और वहां से आकर वर्ष पृथक्त्व में मोक्ष जाना संभव। स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, जिसने स्त्री वेद का उत्कृष्ट कर लिया है अब बहुभूमि के बाद नियम से देव में चला जाएगा। हाँ, बहुभूमि में देखो ईशान के लिए, सॉरी नपुंसक वेद के लिए ईशान स्वर्ग में, स्त्री वेद के लिए बहुभूमि में। यहाँ लिखा ना अंत में पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण आयु के साथ असंख्यात वर्ष के आयु वाले जीव में उत्पन्न होकर आयु के अंतिम समय में स्थित है। वहाँ उसने मैक्सिमम उसको कहा स्त्री वेद को पूर्ण किया है, पूर्ण दिया ऐसा कुछ शब्द पूर्ण किया। देखो स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होने के बाद उसकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का इससे कम काल संभव नहीं है। देव में 10,000 वर्ष
और वर्ष
और वहां से मनुष्य होकर यही कारण है कि यहाँ पर इसका जघन्य काल वर्ष पृथक्त्व अधिक 10,000 वर्ष, इन्हें 10,000 वर्ष बीच में ले लेना देव के, प्लस वर्ष पृथक्त्व मनुष्य में लेना, अभी ये स्त्रीवेद सहित जन्म होना चाहिए ना इसका।
ये तो अनुत्कृष्ट की बात है ना, तो स्त्रीवेद नहीं होगा
उत्कृष्ट करने के बाद अनुत्कृष्ट करना है ना उसको, उत्कृष्ट कहाँ, यह उत्कृष्ट की बात है।
वो तो देव में स्त्रीवेद भी जाएगा, पीछे तो मनुष्य में तो सम्यक दृष्टि होकर भी आ सकता है अनुत्कृष्ट के बाद।
आ सकता है, यदि आता है तो उसको हम मैक्सिमम नहीं मिलेगा हमको, यहाँ किस वेद में लाना उसको।
तो पुरुष व्यक्ति उदय के साथ भी मनुष्य हो सकता है ना।
हाँ हो सकता है
हाँ।
परंतु स्त्रीवेद का मैक्सिमम कहाँ होगा,
यहाँ पे सत्ता की अपेक्षा बात है।
छठी पुस्तक निकालना, नीचे होगी सत्ता की हाँ? वो वहाँ तो उत्कृष्ट हुआ
हाँ,
हाँ बाद में अनुत्कृष्ट ही लेना है सब।
तो पुरुष देव में गया और पुरुष वेद के साथ भी वो मनुष्य में आ सकता है,
केवल उसके बाद कितना काल बाकी हाँ, इतनी बात
हुई
हाँ। यानी उसमें बाद में उसको सम्यक तो प्राप्ति की बात कुछ है नहीं, ऐसी कंडीशंस नहीं है
हाँ।
स्त्री वेद का उत्कृष्ट और उसके बाद अनुत्कृष्ट की बात यहाँ लिखी नहीं है ना,
नहीं वहाँ पे कुछ मिनिमम काल बताया नहीं।
उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट स्वामित्व में शुरू में जो लिखा है ना, उत्कृष्ट स्वामित्व और अनुत्कृष्ट,
अच्छा प्रिफेस में जिसे ही पढ़ते हैं मैं
पेज पर है। देखो जो गुणित कर्मांश वाला जीव पेज 99 पुस्तक छे, जो गुणित कर्मांशिक वाला जीव असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुआ, वहां जिसने पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र आयु को लेकर त्रिवेद को पूरा किया, कितनी आयु है उसकी, तीन पल्ले भी हो सकती है, परंतु उसको त्रिवेद को पूर्ण करने के लिए उसके पल्ले का संख्या का भाग काल लगता है, उसके त्रिवेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। उसमें जितने आवश्यक कंडीशंस थी वो सब ले लेना है।
इसमें ऐसा होगा ना, जो देव में जाएगा वो स्त्री वेद के साथ जाएगा और पीछे मनुष्य में कोई भी वेद के साथ आ सकता है, ऐसा मेरा क्वेश्चन था।
देखो ऐसा है ना, भूभूमि का जीव कहाँ जाता है,
देव में
जाता है
हाँ, तो वहाँ पे
तो वहाँ बंध कौन सा करेगा, स्त्री या पुरुष वेद का
हाँ।
नपुंसक वेद का बंध नहीं करेगा, तो इसलिए वहाँ पर स्त्री वेद वाला
हाँ।
उसको लिया
हाँ।
और ये भी एक बार नहीं, बारम्बार उसने ये स्त्री वेद को पूर्ण करने के लिए तिरंश मनुष्य की आयु बारम्बार ले ली है, 100 पेज पर लिखा है।
हम लोग का यहाँ पे जघन्य काल की बात है
हाँ, यहाँ जघन्य की बात है, परंतु उत्कृष्ट कौन करता है उसके लिए हाँ। बात चल रही है, यानी बहुत बार असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य तिर्यंचों में उत्पन्न होकर उसमें भी पल्ले के असंख्यात भाग वाली आयु उसने अधिक बार की
हाँ।
और उसमें भी स्त्रीवेद का उसने मैक्सिमम बंद किया, एक बार की बात नहीं, ऐसे बहुत बार किया तब अंत में उसका मैक्सिमम हुआ है। यानी वो संचय की अपेक्षा उसका अधिक हो गया है।
100 पुष्प
पर यही लिखा है कि ये उसने बारंबार किया। देखो नीचे से दूसरा शासन का असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुआ ऐसा क्यों कहा? तो नपुसक वेद के बंध की विच्छित्ति करके। क्यों विच्छित्ति हुई? क्योंकि भोग भूमि का जीव है
देव का,
इसके बाद देव में जाने वाला है,
तो
वहाँ स्त्री और पुरुष दो ही है, क्योंकि जिस गति को बांधता है उसके अकॉर्डिंगली उसके वहाँ बंधेगा वेद भी। हाँ, अंत में है परंतु वो पल्ल के असंख्यातवें भाग काल तक लगाता है।
इसे भी वहाँ पे भोग भूमि में नपुंसक वेद तो बांध सकता है?
नहीं बांधता है, क्योंकि हाँ
देवगति का
बंध करेगा,
पुरुष वेद या स्त्री वेद का ही करेगा।
और त्रस कायकों में स्त्री वेद का बंध करते हुए बहुत बार असंख्यात वर्ष की आयु वाले 3 इंच मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। ये अभी मैंने जो अभी आपको बताया, मैंने पल्ले के असंख्यात में भाग इतनी आयु लेकर बहुत बार भूमि में जन्मा है। वहाँ पल्ले के असंख्यात भाग आयु हो सकती है कि नहीं हो सकती? कम से कम आयु कितनी है वहाँ पर? प्लस एक समय, करोड़ पूर्व प्लस एक।
कहाँ की बात करें?
भोग भूमि की, जगन्य आयु, भोग भूमि की जगन्य आयु। यहाँ क्या कहा? पल्ले के असंख्यात भाग इतनी आयु लेकर बहुत बार भोग भूमि में जन्मा, यानी बारंबार उसने स्त्री वेद का बंध बहुत किया है, तब जाके उसका उत्कृष्ट होगा। एक ही बार की बात नहीं है। फिर मनुष्य 3 इंच, ऐसे बहुत बार उसने स्त्री वेद का ही बंध किया और बहुत बार भोग भूमि में गया है। अब अपने आते हैं मूल पे, उसके पश्चात उसका कम से कम काल रह गया था उसकी बात है, वो किस वेद से आता है उसकी बात नहीं है। हाँ, हमें विशेषार्थ पढ़ रहे थे 5 नंबर के पृष्ठ पर नीचे से 5वीं लाइन। स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होने के बाद उसकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का इससे कम काल संभव नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर इसका जघन्य काल वर्ष प्रदत्व अधिस 10,000 वर्ष प्रमाण कहा है। यहाँ जिन प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल कहा गया है, उनकी इस विभक्ति का उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व के समान ही है, यह बिना कहे ही जान लेना चाहिए। क्योंकि काल में मिथ्यात्व से जितनी विशेषता थी वही यहाँ पर कही गई है। क्या कहना चाहते हैं? मिथ्यात्व के समान है परंतु इतनी विशेषता है, ऐसा जब स्टेटमेंट करते हैं, कथन करते हैं, तो जगन्य तो उत्कृष्ट काल जगन्य काल एक समय वो तो घटित होता है, अनुत्कृष्ट के बारे में जो डिफरेंस है उसको तो उन्होंने मूल में बता दिया। अनंतानुबंधी में जो डिफरेंस है, स्त्री वेद में जो डिफरेंस है, समय समय मिथ्या समय, वो सब बता चुके। नवरी सम्मत सम्मा मिच्छत्तानं अनुकस्स दौव कालो जहन्येन अंतोमूर्तम्। मिथ्यात्व के समान शेष कर्मों को जानना ऐसा कहा था। अभी नवरी यानी इतना विशेष है, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के बारे में कहेंगे।
एक लाइन पढ़ने के लिए गई है,
एक रहेगी।
हाँ,
अब सम्यक्त्व को हलंत वाला करना, खोड़ो खोड़ो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट द्रव्य के काल का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ऊपर बता रहे हैं नवरी सम्मत्त सम्मत्त सम्मामिच्छत्तानं अनुकस्स दौव कालो जहन्येन अंतोमूर्तम्। अनंतानुबंधी में जगन्य अंतर्मूर्त देखा था हमने। फिर संज्वलन पुरुष वेद में अनादि अनंत अनादि शांत सादि शांत वहाँ के अंतर्मूर्त देखा था। स्त्री वेद में
10,000 वर्ष प्लस
वर्ष पृथक प्लस 10,000 वर्ष देखे थे और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में अभी बता रहे। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट का काल कितना है तो एक समय, अनुत्कृष्ट में जो डिफरेंस है वो बताएं। इतनी विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट द्रव्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। 6 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। क्योंकि इन दो प्रकृतियों की सत्ता से रहित जो जीव सम्यक को प्राप्त करके, कौन सा सम्यक होगा उसको भानु
बहन?
प्रथम ऑप्शन ही होगा। मंजू बहन ख्याल में आती बात? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जिसके सत्ता नहीं है ऐसे जीव को कौन सा सम्यक होगा? प्रथम ऑप्शन होगा, क्योंकि एक मिथ्यात्व प्रकृति है तो वह तो प्रथम ऑप्शन ही होगा। जिसके तीन है उसको तो डायरेक्ट क्षोक्षम भी हो सकता है। इन दो प्रकृतियों की सत्ता से रहित जो जीव सम्यक्त को प्राप्त करके और अनंतर मुहूर्त काल तक सम्यक्त की सत्ता होकर दर्शन मोह की क्षपणा करता है। सत्ता होकर इन्हें अभी प्रथम ऑप्शन सम्यक्त के काल में सम्यक प्रकृति सत्ता में आ गई, बन गई मिथ्यात्व में। अंतर्मूर्त में उसने विसंजना भी की और संक्षपणा भी कर दी, तो उसकी सत्ता कितने काल तक रही?
अंतर्मूर्त।
हाँ, वो सारा प्रोसेस उपशम से क्षोपशम होगा। अभी अनंत अनुबंधी की विसंजना उपशम काल में भी हो सकते, बाद में भी हो सकते, तो उसका सबका जघन्य जघन्य काल भी ले लेते हैं और क्षपणा का भी काल ले लेंगे तो भी अंतर्मूर्त होगा। उसके इन दोनों प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट द्रव्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त पाया जाता है, या इनके उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी जो क्षपक जीव इन्हें अनुत्कृष्ट करके निस्सत्व कर देता है, उसके इनके अनुत्कृष्ट द्रव्य का सबसे जघन्य काल अंतर्मूर्त कहना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त काल से भी यह काल जघन्य देखा जाता है। ये बात ख्याल में आती कुछ? क्या कहते हैं ये जघन्य काल कैसे घटित किया? प्रथम ऑप्शन समय तो प्राप्त किया और अंतर्मूर्त में क्षपणा की। सत्ता नहीं थी, सत्ता बनी निसत्व पर। दूसरी पद्धति से बता रहे हैं, सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट कब होता है?
जब ही उल्टी
दर्शन मोहनी की क्षपणा करते हुए सम्यक मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में आ गया। अब सम्यक मिथ्यात्व का भी सम्यक प्रकृति में आ गया, उस समय उसका द्रव्य मैक्सिमम है। उसके बाद यानी अंतिम कांडिक हो गया, उसके बाद उसका कितना काल रह गया अभी? एक अंतर्मूर्त क्षपणा के लिए, यानी उत्कृष्ट करने के बाद वो अनुत्कृष्ट करेगा कि
हाँ।
क्योंकि क्षपणा शुरू हो गई उसकी, यानी गुणश्रेणी तो चल ही रही उसकी।
ये अंतर्मूर्त छोटा हो जाएगा?
हाँ, ये सबसे छोटा होगा पहले वाले, क्योंकि पहले में औपशमिक सम्यक्त्व का काल, क्षोक्षम का काल और सब पूरा
साइज
का काल, पूरा क्षपणा का काल लिया। यहाँ तो क्षपणा में भी कितना छोटा लेना, मिथ्यात्व की घटना हो गई है, समय मिथ्यात्व की हो गई तभी इसका मैक्सिमम हो गया, उसके पश्चात वाला समय से लेना शुरू करना। अभी जो बचना बचा है सम्यक प्रकृति की क्षपणा बाकी है केवल, तो ये काल सबसे छोटा है, तो इतना भी अनुत्कृष्ट में घटित करना। जैसे हमने अन्यत्र किया था ना, संक्रमण के बाद उसमें ज्यादा माल आया और फिर वो घटते गए, वैसे यहाँ भी ले लेना।
ये गुणित कर्मांशिक का होगा ना?
हाँ नहीं, गुणित कर्मांशिक में अभी
क्योंकि ये
गुणित कर्मांशिक ले सकते हैं, मिथ्यात्व में से जितने मिथ्यात्व के परमाणु है उसने उतने उसने परिणमित हो जाते हैं। उपकस सेना बे छावटी सागरो बमाणी साधी रेयानी, उत्कृष्ट काल किसका? अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल चल रहा है, अनुत्कृष्ट में रहने का उत्कृष्ट काल। साधिक 266 सागर प्रमाणे, क्योंकि इन दो प्रकृतियों की सत्ता से रहित जो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होकर पुनः मिथ्यात्व में जाकर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक इनकी उद्वेलना करते हुए अंतिम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली के शेष रहने पर सम्यक्त को प्राप्त हुआ। ख्याल में आती बात? और प्रथम 66 सागर काल तक भ्रमण करके पुनः मिथ्या दृष्टि हुआ तथा वहां पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक उद्वेलना करते हुए चरम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली के शेष रहने पर सम्यक्त को प्राप्त करके यानी क्षपणा उसके उद्वेलना पूरी नहीं की द्वितीय 66 सागर काल तक उसके साथ भ्रमण करता रहा। अंत में मिथ्या दृष्टि होकर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल के द्वारा जिसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की उसके उक्त काल उपलब्ध होता है।
तीन बार पल्ले का सत्य द्वारा
तीन बार विशेषार्थ यहाँ पर दो चूर्णी सूत्रों द्वारा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के जघन्य और उत्कृष्ट काल का निर्देश किया गया है। ऐसा करते हुए वीरसेन स्वामी ने जघन्य काल दो प्रकार से घटित करके बतलाया है। प्रथम उदाहरण में तो ऐसा जीव लिया है जिसके इन दो कर्मों की सत्ता नहीं है। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि होकर अंतर्मूर्त में यदि इनकी क्षपणा करता है तो उसके इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतर्मूर्त काल उपलब्ध होता है। दूसरे उदाहरण में ऐसा क्षपक जीव लिया है जो इनकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला है और उसके बाद वो अनुत्कृष्ट करेगा। इस जीव के अंतर्मूर्त में इन कर्मों की नियम से क्षपणा हो जाती है इसलिए इसके भी इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतर्मूर्त काल उपलब्ध होता है। ये उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला कब हुआ था?
जब प्रथम करे सम्यक को प्राप्त किया तभी पहले समय
उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला।
हाँ तो वो सम्यक तो प्राप्त कर दे नहीं
क्षपणा में सम्यक मिथ्यात्व को
अरे सॉरी
क्षपणा में सम्यक मिथ्यात्व को
सम्यक रूप परिणाम
यानी सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम फाली खिर गई। सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम फाली को संक्रमित किया तब वो उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला हुआ और उसके बाद अभी अंतर्मूर्त में क्षायिक होने वाला है इसलिए उसका अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त होता है। सात पृष्ठ इस प्रकार सेकंड लाइन अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के ये दो उदाहरण उपस्थित कर वीरसेन स्वामी प्रथम की अपेक्षा द्वितीय को ही प्रकृति में उपयुक्त मानते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि वो सबसे जघन्य है। क्योंकि प्रथम की अपेक्षा अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जितना काल है उससे दूसरे उदाहरण की अपेक्षा अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल स्पष्टतः कम है और जघन्य काल में जो सबसे न्यून हो वही लिया जाता है। यह तो इन दोनों कर्मों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के जघन्य काल का विचार हुआ। जघन्य की बात उत्कृष्ट काल का स्पष्टीकरण स्वयं वीरसेन स्वामी ने किया ही है। यहाँ इतना ही संकेत करना है कि सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना का काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण होकर भी न्यूनाधिक है इसलिए जहाँ जिस कर्म की अंतिम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली प्राप्त हो वहाँ उसके सद्भाव में रहते हुए अंतिम समय में ही सम्यक्त्व को प्राप्त कराना चाहिए। हाँ उद्वेलना काल भी छोटा बड़ा होगा। हाँ यानी बीच बीच में एक बार सम्यक्त्व प्राप्त किया उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया मिथ्यात्व में चला गया
पल्ले का असंख्यात विभाग पीछे
पहले तो 66 सागर काल तक रहा पल्ले के असंख्यात विभाग तक उद्वेलना की फिर समय को प्राप्त किया फिर 66 सागर काल तक रहा उसके पहले पहले मिथ्यात्व में गया पल्ले के असंख्यात विभाग में फिर समय को प्राप्त किया यहाँ अंतिम समय बाकी है तब प्रथम उपशम किया उसने मैंने दो बार बीच में छाछर सागर किया,
तीन बार
छाछर सागर, दो बार
छाछर और पल्ले का संख्या,
लास्ट में फिर पल्ले का संख्या से भागकाल तक उद्वेलना, उद्वेलना वहाँ पूरी करना उसकी। मैंने बार बार छाछर छाछर सागर नहीं, छाछर सागर दो ही बार लेना है। जहन्न कालो जानी दून ने दऊ, जघन्य काल को जान कर ले जाना चाहिए, यह सूत्र सुगम है। विशेषण, इस चूर्णी सूत्र में जघन्य पद से तात्पर्य मिथ्यात्व आदि 28 प्रकृतियों के जघन्य द्रव्य से है। यानी जघन्य काल जो लिखा है ना, जघन्य प्रदेश विभक्ति का
जघन्य काल।
देखो क्या कहते, पहले हमने क्या देखा है, निकालना सूत्र। पहले ना, पहले में कालो लिखा था, फिर दूसरे ही सूत्र में लिखा था मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का कितना काल है, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल फिर घटित किया, वो बता के अभी तक आ गए। अब कहते हैं जघन्य काल को जानकर ले जाना चाहिए, तो वहां बताया था ना अभी तक जघन्य काल, तो जघन्य का काल यानी जघन्य प्रदेश विभक्ति का काल, उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट दोनों लगे। जघन्य काल से क्या तात्पर्य, जघन्य विभक्ति का काल, जघन्य प्रदेश विभक्ति का काल, यहाँ लिखा ना विशेषार्थ में उन्होंने लिखे हैं जघन्य काल को यानी जघन्य प्रदेश विभक्ति के काल को। यहाँ विशेषार्थ में क्या लिखता है, तात्पर्य क्या है, जघन्य पद से तात्पर्य मिथ्यात्व आदि 28 प्रकृतियों के जघन्य द्रव्य से, जघन्य द्रव्य का लगातार रहने का काल। जघन्य कब करता है, तो क्षपणा के अंतिम समय में, तो एक ही समय में जघन्य होगा ना, जहां जिसका जघन्य होता हो उसका जघन्य और उत्कृष्ट जो काल हो उसे जानकर घटित कर लेना चाहिए, यह बात इस चूर्णी सूत्र में कही गई है। इस प्रकार चूर्णी सूत्र के आश्रय से काल का कथन करके अब यहाँ पर उच्चारणाचार्य के व्याख्यान के क्रम को कहेंगे, फिर दोबारा वही बात कहेंगे, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल जघन्य और उत्कृष्ट, और जघन्य प्रदेश विभक्ति का काल। तो काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, एक काल उत्कृष्ट की बात नहीं है, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मिथ्यात्व, जब ओह कहते जहां कहां भी उसका उत्कृष्ट हो, और आदेश तो जिस मार्गना में जितना उत्कृष्ट हो। ओह में तो हम कहेंगे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट वो गुणित कर्मांशिक सातवें नरक के अंतिम समय। अब मार्गना में अगर उत्कृष्ट बताना है तो मनुष्यों में पूछा अगर बांट लेते हैं, तो मनुष्यों में जो कोई वहां करके जो मनुष्य में आएगा बाद में उसको कहेंगे। तो मार्गना का उत्कृष्ट अलग है और ओग का उत्कृष्ट, ओग में जहां कहां भी हो वो सब उसमें इंक्लूडेड है। ओग से मिथ्यात्व 8 कषाय और 7 9 कषायों की, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का कितना काल है, तो जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, उसका स्वामित्व तो हमने देख लिया था। अब यहाँ तो काल की बात करें, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल वर्ष पृथक का प्रमाण है। मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट की वर्ष पृथक, उत्कृष्ट करने के बाद, याद है उत्कृष्ट करने के बाद नारकी में था, अभी वो दो चार भाव तिरंज के करेंगे, क्योंकि पांच पहले पंचेंद्रिय होगा, फिर एकेंद्रीय में चला जाएगा, फिर मनुष्य में आएगा और जल्दी से जल्दी क्षपणा करेगा, तो वर्ष पृथक प्रमाण। और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि वहां उत्कृष्ट करके गया है अब वो त्रस्त की अंतिम पर्याय ली थी और वहां से एक इंद्रिय में गया और उत्कृष्ट अनंत काल तक वहां रह गया असंख्यात पुद्गल परिवर्तन को मान। वहां से जब निकलेगा और जब वो उत्कृष्ट करेगा तब की बात है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा काल जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्यकाल अंतर्मूर्त है। वहां तो वर्ष पृथत्व लिया था, यह जघन्यकाल अंतर्मूर्त क्योंकि दो बार विसंयोजना कर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। एक सपना के काल में जब अन्य प्रकृति उसमें संक्रमित होती है, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, वो हमने देखा था ना। और उत्कृष्ट काल साधिक दो छियासठ सागर प्रमाण है। पेज नंबर 8 जो हमने देखा है उसी को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर चार संज्वलन और पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।
सो कोई भी जीव जो ये सम्यक्त्व के साथ दो बारी 66 सागर तक घूम,
हाँ, दो बारी 66 सागर लिया,
उसमें कुछ कम करना है, पर तीसरी बार नहीं घूम सकता है मिथ्यात्व में जा सकता,
यानी वो बारंबार उतना ही करता रहे ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता है।
उद्वेलना पूर्ण होने के यानी कंटिन्यूअस में ज्यादा नहीं करता,
हाँ, सत्ता के साथ साधिक पे साधिक जो शासन सागर तक।
पर ऐसा भी नहीं कि बार बार वो उसने शासन सागर किया था, ऐसा भी कहीं नहीं आया,
नहीं आया।
जैसे हम पल्ले के असंख्यात भाग बार सम्यक तो कांडक सहमा सहम कांडक, वैसे छासठ सागर वाली बात अधिक से अधिक ऐसा नहीं आई है, आगे कहीं आएगी तो देखेंगे। ऐसा लिखा तो नहीं है कहीं ऐसा,
हमने मैक्सिमम तो 132 सागर ही देखा है ना।
हाँ, 132 में बीच में समय
ये तीन बार दो बार हाँ। तीन बार जो हमने देखा हुए।
यानी उसकी सत्ता कितने काल तक अधिक से अधिक रहती है तो इतने काल तक, तीन बार पल्ले का असंख्या तो भाग
और
प्लस दो बार 66 सागर। देखो हम संज्वलन की बात देख रहे हैं, चार संज्वलन और पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। उत्कृष्ट कब है? अन्य कषाय या दो कषाय उसमें संक्रमित होते तब। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अनादि अनंत अभवियों के लिए अनादि शांत, क्योंकि अनादि से अनुत्कृष्ट था, जब उसने उत्कृष्ट किया तो शांत हो गया। और सादि शांत काल, उत्कृष्ट के बाद जो अनुत्कृष्ट बनेगा
फिर
उसको सादि शांत कहेंगे। उनमें से जो सादि शांत काल है उसका यह निर्देश है, उसकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त में अभी उसकी क्षपणा पूरी होने वाले ही है नियम से। स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। हमने जो देखा था भूमि के अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट होता है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल वर्ष प्रत्युत अधिक 10,000 वर्ष है, क्योंकि वहां से वो 10,000 वर्ष की देवायु करके मनुष्यों में आकर उसने क्षपणा। और उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। अनुत्कृष्ट का जो काल है असंख्यात, क्योंकि उसको सादी सांद वाला लेना है ना वहां पर।
ऐसा हो सकता है अभव्य जीव में कभी ये स्त्री वेद के नपुंसक वेद की या पुरुष वेद की सत्ता ही नहीं होगी, अभव्य जीव में तीनों की सत्ता,
तीनों वेदों की सत्ता है ही प्रत्येक जीव के, इवन तीर्थंकर होने वाले जीवों के भी तीनों की सत्ता है जो उसकी क्षपणा नवे में जाके।
नहीं, कोई ऐसा जीव लिया के जो ये खाली भोग भूमि और मनुष्य देव में जाता है तो उसके नपुंसक वेद की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना।
सत्ता नष्ट नहीं होती, सत्ता रहती है। जैसे अन्य प्रकृतियां जो उद्वेलना योग्य है, ऐसे इसकी तो उद्वेलना होती नहीं है। वक्तव्य वाला भंग नहीं,
नहीं वेद का ज्यादा से ज्यादा बंद कितना हो सकता है? 10 साल वेद का।
वेद में हमने देखा था ना
15-20 संक्रमण नहीं अपेक्षा, 15 सागर
15-20 ऐसा है ना।
नहीं, जो जीव देव में जाता है 15 सागर से ज्यादा आयु वाले में, उस किस भी सत्ता में से नष्ट नहीं होगा,
नष्ट नहीं होता वेद, नष्ट नहीं होता 10-15-20
क्योंकि जो 33 सागर वाली आयु में जाएगा और इसकी सत्ता ये खाली 15 सागर की है।
देखो देखो, उसने तो 33 सागर में आया है तो मुनि आए हैं, मुनिराज आए हैं, तो वहाँ तो कोई बंद नहीं कर रहे थे और वहाँ भी कोई अभी सवाल ही नहीं है बंद का। अब वहाँ से आएंगे तो भी बंद का सवाल नहीं है।
नहीं नहीं, मेरे
फिर भी वो भी जीव क्षपणा करेंगे तो नपुंसक हुए था।
70
अंदर पड़ी है ना सत्ता में,
15 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, वो 15 कोड़ा कोड़ी सागर है और ये 15-33
अच्छा, आपने उसमें आप हिसाब कर रहे थे कोड़ा कोड़ी वाले, यानी कितने भी काल लगातार वो समय को में हो तो भी
सत्ता,
उसके तो सत्ता है ही, सभी जीवों की है, सभी क्योंकि जब क्षपणा करता है, क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो इन सभी कर्मों की विद्यमानता है उसके। ऐसा नहीं किसी के पहले चढ़ी गए, किसी ने कम की क्षपणा की, ऐसा नहीं होता है। विशेषण, यहाँ उच्चारणाचार्य के व्याख्यान में वही सब काल कहा गया है जो कि चूर्णी सूत्रों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। मात्र चूर्णी सूत्र में मिथ्यात्व आदि की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल 3 प्रकार से बतलाया गया है। सो यहाँ अनंत काल और असंख्यात लोक प्रमाण काल, इन 2 को छोड़कर एक का ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि उक्त 3 प्रकार के कालों में से सबसे जघन्य काल यही प्राप्त होता है और यह निर्विवाद है। यहाँ देखा ना, देखो मिथ्यात्व में भी अनुत्कृष्ट वर्ष पृथक्व लिया है, वो कैसे उत्कृष्ट करने के बाद गुणित कर्मोशिक वाला 2-4 भाव तीर्यंश करके मनुष्य में आएगा,
सपना कर
2-4 भाव तीर्यंश क्यों करने हैं?
उत्कृष्ट और सातवें नरक के,
गुणित कर्मोशिक के लिए क्या कंडीशन थी? त्रस पर्याय के अंत में वो नरक में आया,
सातवें नरक में।
अब त्रस में से नरक में से तो एकेंद्रीय में नहीं जा सकता, तो उसका एक भाव तो संगी पंचेंद्रिय तीर्यंश का होगा
और पीछे वो एकेंद्रीय में,
और वहां से वो एकेंद्रीय में जाएगा, तो एक पंचेंद्रीय तीर्यंश का एक भाव, फिर एकेंद्रीय में दो चार है, दो तीन जो करेगा, एक करेगा दो तीन करेगा और वहां से मनुष्य होगा। ये सब भी अंतर्मूर्त में हो सकता है। आगे ये तो हमने ओघ में देखा, अब मार्गणाओं में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बताएंगे। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 6-9 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, वही अंतिम समय में घटित करना उसको। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि 7वीं पृथ्वी में आयु के एक समय अधिक असंख्यात स्पर्धक मात्र शेष रहने पर उक्त कर्मों के द्रव्य को उत्कृष्ट करके और दूसरे समय से लेकर अंतर्मूर्त काल तक अनुत्कृष्ट द्रव्य के साथ रहकर निकलने वाले जीव के उक्त काल पाया जाता है।
तीन वेद को छोड़ा है तो नारकी वेद, तो 3 वेद तो उत्कृष्ट हो ही नहीं सकते, तो ये 7वें नरक के 3 वेद का उत्कृष्ट द्रव्य नहीं होगा, ऐसा ही ध्यान लेना है। क्योंकि हमने वो ईशान स्वर्ग वाला नपुंसक वेद वाला देखा है जो ये
नारकियों में इनका बताया है,
नहीं मार्गणा में, ये
मार्गणा में ही घटित करना है।
हाँ, तो नारकी में ये 7वें नरक वाला तीन वेद का उत्कृष्ट नहीं करता, ऐसे समझना यहाँ पे।
हाँ, वो अंत समय में नहीं करता है, नारकियों में उत्कृष्ट, जिसने उत्कृष्ट करके जो नरक में आया है,
हाँ उसके पहले,
उसके पहले समय में घटित है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यानी दो मत है ना यहाँ पर, गुणित कर्मांशिक उत्कृष्ट कब करता है तो आयु के अंत में, ये एक प्ररूपण है। दूसरी प्ररूपण अंतर्मूर्त पहले करता है, तो इसलिए अंतर्मूर्त यदि पहले करता है तो बाकी जो बचा हुआ अंतर्मूर्त है वो नरक के लिए अनुत्कृष्ट है वहां पर, तो वो अंतर्मूर्त घटित होगा। इसलिए शंकाकार पूछ रहा है, नारकी के अंतिम समय में प्रदेश सत्कर्म के उत्कृष्ट स्वामित्व का कथन करने वाले सूत्र के साथ इस व्याख्यान का विरोध कैसे नहीं प्राप्त होता, क्योंकि एक बार आप अंत समय में करते हैं और फिर करते हैं उसके बाद फिर अंतर्मूर्त अनुत्कृष्ट है। समाधान, उक्त सूत्र के साथ इस व्याख्यान का विरोध तो है ही, किंतु आयुबंध के काल में जो प्रदेशों का क्षय होता है, देखो क्या प्रदेशों का क्षय अन्यथा नहीं होता, आयुबंध के काल में क्या होता है, वो जितना समय प्रबद्ध आता है वो आठ में विभाजित होता
कम आता है,
तो आय कम हो जाती है और व्यय तो उतना ही रहा, तो वहां कम खर्च कम हो जाता है, उससे आगे के काल में होने वाला प्रदेशों का संचय बहुत है,
नहीं पर वहां पे भी उत्कृष्ट तो नहीं होगा ना। उत्कृष्ट हमने आयु के अंत में देखा या अंतर्मुख पहले देखे देखा, तो ये आयु का बंध पहले करेगा
नहीं, ये तो पहली प्ररूपण है, आयु बंध के समय में कम होता है और उसके बाद में उत्कृष्ट कर लेता है। इसलिए इस उपदेश के अनुसार नारकी के अंतिम समय में ही उत्कृष्ट प्रदेश स्वामित्व प्राप्त होता है, ये तो एक प्ररूपणा हुई नहीं ख्याल में, ये अंतिम समय वाली, ये यति ऋषभ आचार्य का उपदेश है। परंतु उच्चारणाचार्य के अभिप्राय से आयुबंध के काल से आगे के काल में होने वाले संचय से आयुबंध के काल में प्रदेशों का क्षय बहुत होता है, इसलिए आयुबंध के प्रारंभ होने के पूर्व अंतिम समय में है, अर्थात आयुबंध प्रारंभ होने के अनंतर पूर्व समय में वहीं पर उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। अतएव जिनाज्ञा का निर्णय न होने से, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा उसका निर्णय न होने से इस विषय को स्थगित करके व्याख्यान करना चाहिए, यानी इसमें तो कोई बहस करने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे दो उपदेश है जिनेंद्र भगवान जानते हैं, ऐसा कहते हैं। उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट काल 33 सागर, जो 33 सागर वाला है पूरे 33 सागर उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, इतनी विशेषता है अनंतानुबंधी चतुष्क की, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय है।
ये कैसे होगा,
क्योंकि 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो उपशम समय दृष्टि नारकी जीव साधन गुण स्थान को प्राप्त होकर, क्या बात है, और अनंतानुबंधी चतुष्क के सत्व को उत्पन्न करके दूसरे समय में अन्य गति में चला जाता है, उसके एक समय काल पाया जाता है नरक में, एक समय, यानी इसमें ये मानना पड़ेगा कि औक्षमिक समय दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, तो विसंयोजना करके फिर उसने
एक समय के लिए शासादन में गया, भिक्षात्व में गया,
एक समय के लिए शासादन में रहा और वहां तो मरण हो सकता है, अनंतानुबंधी की सत्ता हुई एक समय के लिए और नरक की मार्गना बदल गई।
ये शासन में तो मिथ्यात्व का बंध नहीं है, तो वहाँ पे सत्ता उत्पन्न हो जाती है।
अनंतानुबंधी का बंध है, अनंतानुबंधी का बंध भी है, संक्रमण भी है, हृदय भी है, ये विशेषता है शासन की। यदि मिथ्यात्व में जाता है उपशम समय तो काल के बाद, तो वहाँ की विशेषता क्या है? बंध भी है, संक्रमण भी है, परंतु आवली काल तक उदय नहीं है। अनंतानुबंधी की विसंजना करके जो जो मिथ्यात्व में चला जाता है उसके नया बंध होगा, परंतु आवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा। पर शासाधन में जाने वाला उसी समय में उदय चालू हो जाता है। ये भी बात आई थी, ये परिणामों की विशेषता है। और इसके लिए नाम दिया था उनको 21 का बंध वाला स्थान। शासाधन में कितनी मिथ्यात्व की कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? मिथ्यात्व की नहीं, मोहनी की।
शासाधन में एक मिथ्यात्व को छोड़ के सभी 26 में एक मिथ्यात्व को जो 25 का बंध होता है,
एट ए टाइम 25 का बंध होता है?
नहीं, 25 का नहीं होगा, उसमें से वो प्रतिपक्ष वाला छोड़ देता
है। तो उसको कितने प्रकृति का स्थान, बंध स्थान कितने का गए?
21 का।
देखो 22 कैसे है, मिथ्या तो 16 कषाय, बहिर्गुप्तता तो ग्रोहबंदी है।
हाश्यरति
या शोकरति, और तीन वेद में से एक वेद, यानी 7 में से 3 बंधेगी। मिथ्या तो 16 कषाय, बहिर्गुप्तता 19 तो ग्रोहबंदी है और 3 22। मिथ्या तो गुणस्थान में 22 का बंध होता है, शासाधन में 21 का होता है। तो अनंतानुबंधी के उदय के लिए ये कंडीशन है, जो 21 का बंध स्थान है वहां पर अनंतानुबंधी के विसंयोजना वाला जीव आता है, उसी समय में उसका उदय चालू होता है। है ही नहीं है, फिर भी परिणाम ऐसे है, उसी समय वो उसका संक्रमण के द्वारा भी उसके प्राप्त होता है, उसका उदय भी चालू होता है। यही ये अपवाद है उसके लिए, अन्यथा जहाँ जिसका उदय नहीं है वहाँ उसका बंध नहीं पाया जाता। अनंतानु मिथ्यात्व में क्या होता है, ये तो हमारे प्रूविंग पॉइंट है कि विसंयोजना वाला जो मिथ्यात्व में गया है, अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है, फिर भी अनंतानुबंधी का बंध क्यों हो रहा है? बोलो, मिथ्यात्व के कारण। वहाँ जो विच्छित्ति रूप 16 प्रकृतियाँ पाई जाती है वो मिथ्यात्व के कारण बन रही है, दोनों के कारण बनती है, मिथ्यात्व से भी और अनंतानुबंधी से भी। परंतु मिथ्यात्व से बंध नहीं होता है कहने वालों के लिए ये सबसे बड़ा प्रूफ है। समझे कि नहीं समझे?
नहीं नहीं, कैन यू रिपीट इट, मैं लिख रहा था।
कोई ऐसा कहने वाले है कि कषाय से ही बंध होता है, मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता, मिथ्यात्व अकिंचित करे बंध में। आपको नहीं मालूम, आपको प्रश्न ही नहीं मालूम तो समाधान देने से क्या फायदा है? ये अभी मंगलायतन में पूछा था, पूरी सभा में पूछा था कि आपकी क्या उसमें राय है। हमें हमारी क्या राय है, हम तो भगवान की राय बताएंगे, भगवान ने जो बताया है अपने राय से थोड़ी चलता है। आगम का प्रूफ क्या है? बहुत बड़ी चली थी, बहुत चर्चा चली थी और वाद का प्रश्न और प्रेस्टीज का इशू बना दिया था। फिर उसको एक बार
ने ऐसा बताया,
उसने बोलो
कोई विशेष व्यक्ति ने ऐसे बताया, बहुत नामी चीज है वो, कि मिथ्यात्व से बंध नहीं होता है, मिथ्यात्व बंध में अकिंचित करे, कषाय उनसे ही बंध होता है, ऐसा उनका कहना था। तो ये जो पॉइंट अभी हम जो देख रहे हैं, कौन से धौला पुस्तक 7 पेज 9 पर यहाँ बताया गया है, जय धौला पुस्तक 7, कि 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो उपशम सम्यक दृष्टि नारकी जीव शासाधन गुणस्थान को प्राप्त होता है, इसका अर्थ क्या हो गया? 24 की सत्ता जिसकी है
और उसी समय अनंतानुबंधी के सत्व को प्राप्त भी करता है।
अब नहीं, अभी वो तो सुनो, 24 की सत्ता यानी क्या, वहाँ अनंतानुबंधी नहीं है और ऐसा जीव सासाधन में आकर मिथ्यात्व में जाता है तो वहाँ उसको मिथ्यात्व में जाएगा तो अनंतानुबंधी की तो सत्ता है नहीं। लेकिन
नहीं, आप सासाधन को बीच में मतलब,
अच्छा
सासाधन में आते तो उसकी सत्ता हो गई है
किसकी,
अनंतानुबंधी की।
हाँ।
हमें डायरेक्ट पहले में भेज दो उसको, विसर्जना करके डायरेक्ट पहले में जाता है, वहाँ अनंतानुबंधी का उदय नहीं है अवली काल।
वो एक समय पूर्ता रहकर नीचे गया ना, यहाँ क्या बताया,
एक समय में अगर रहता है ये तो अलग बात है, यहाँ सासाधन में आया है उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ नारकी में रहते हुए अनंतानुबंधी की एक समय वाली सत्ता निश्चित करने की, आप जो पॉइंट बता रहे
उससे ये लागू नहीं हो रहा,
वहाँ ये बात लागू नहीं होती है, वो इशू अलग है।
हाँ।
और आप जो बोल रहे वो अलग है।
अच्छा अभी इसकी बात करो जो हम बोल रहे थे, जो
यहाँ की बात अकंचित कर वालों के लिए ऐसा उत्तर है, उनका क्या कहना है, मिथ्यात्व से बंध नहीं होता है, अनंतानुबंधी से बंध होता है क्योंकि पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व कुछ नहीं करता, अनंतानुबंधी से ही बंध हो रहा है। तो जहाँ जिसने विसंयोजना करके जो मिथ्यात्व में आया है वो नया बंध करेगा अभी अनंतानुबंधी का, और उसकी बंधावली चलेगी तब तक उदय नहीं है, परंतु बंध क्यों हो रहा है फिर उसका, तो मिथ्यात्व के कारण बंध हो रहा है, यानी अदरवाइज भी मिथ्यात्व से बंध हो ही रहा है, परंतु ये बात सिद्ध करते हैं कि अनंतानुबंधी वहाँ नहीं होते हुए भी मिथ्यात्व से सारी पहले गुणस्थान में जो बंध योग्य प्रकृतियाँ हैं जो ऊपर नहीं बनती है वो मिथ्यात्व से ही बनती है, वहाँ जिनकी विच्छित्ति पहले गुणस्थान में पाई जाती है। देखो जो कोई अभी नया बंध हो रहा है अनंतानुबंधी का, क्यों हो रहा है, मिथ्यात्व से, तो आप कहेंगे उसी समय उदय हो जाएगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नियम है कि बंधने के बाद एक आवली तक उसका उदय नहीं हो सकता, तो आवली काल तक उदय नहीं होते हुए भी मिथ्यात्व के कारण ही सारे बंध हो रहे थे तब तक, आज ख्याल में आई ना।
अभी ये जो बात यहाँ पर बताइए,
यहाँ पर जो आप पूछेंगे तो यहाँ कैसे सातासन में आया वो अनंतानुबंधी के उदय के बिना अनंतानुबंधी कैसे उदय रूप हो गया, तो यही एक अपवाद है, ये 21 प्रकृतियों वाला बंध स्थान है सासाधन वाला, तीसरे में कितने बंध होता है, सत्रह का हो जाता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का रुक गया है, मिथ्या तो ऑलरेडी रुका है, ख्याल में थी बस। तो यहाँ 21 का ये बंध स्थान है, यहाँ पर संयोजना होते ही यानी उसके परिणाम ऐसे बिगड़ गए अनंतानुबंधी के हुए और तत्काल वो संक्रमित होकर भी यहाँ उदय हो गया है, अनंतानुबंधी का उदय चालू हो गया दूसरे के लिए। यहाँ जो पॉइंट है अनुत्कृष्ट का अनंतानुबंधी में एक समय कैसे घटित करना,
एक समय
तो अनुत्कृष्ट ने पहले उसने विसर्जना कर दी थी, ऑप्शन का काल चल रहा है
यानी उसके 24 प्रकृतियों की सत्ता है,
24 की सत्ता है
आगे,
अब उसने क्या किया है,
सासाधन में आया,
वो सासाधन में आ गया औक्षम सम्यक के काल में, सासाधन में आया तो अनंतानुबंधी की सत्ता हुई, जो सत्ता हुई वो अनुत्कृष्ट ही हुई, एक समय में मरा तो नरक में अनंतानुबंधी के अनुत्कृष्ट की सत्ता एक समय के लिए घटित होती।
अभी प्रश्न ऐसा है कि वहाँ अनंतानुबंधी की विसंयोजना किए हुए जीव भी सासाधन में आ सकते हैं,
आते हैं। हाँ, यह हमने पहले भी देखा था क्योंकि इसकी बहुत चर्चा अपनी हुई थी 5वें पुस्तक में मेरे ख्याल से, संक्रमण वाला उदय में आते वहाँ बंधने वाले तो बंधावली उसकी निश्चित है।
आबादा चलती थी
अभी वहाँ पूछा था वो राकेश पंडित ने, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, ये प्रूफ है उसके लिए।
पर इतना याद भी रहना चाहिए कि ये दौला की पांचवी पुस्तक में इतना याद नहीं रहता है, खाली पढ़ा है ऐसे याद बता सकते हैं।
हम यहाँ जयदौला में हमने देखा था।
हाँ नहीं, आपको तो इतना भी याद रहता है, हम लोग को तो वो सब याद नहीं रहता
है। उसकी बात कुछ नहीं है ना। और वो लोग क्या है, हमको आगम का प्रूफ चाहते हैं, मगर उन्होंने ये कहाँ पढ़ा है, उनको कुछ भी बताए उससे क्या, उनको कुछ नहीं समझ में। और अगर हम प्रूफ बताना चाहते हैं तो वहाँ पुस्तकें होते, निकाल के दिखा सकते हैं ना। हाँ देखो, हम आगे पढ़ेंगे। एक समय में ख्याल में आई ना बात, बहुत बहुत अच्छी समझाई। संसाधन में गया है और एक समय में नरक से मरकर अन्यत्र चला गया। हाँ अंत में औषमिक समय तो प्राप्त किया है, अब ये सातवां नरक वाला नहीं ले सकते हैं।
छठा नरक वाला,
छठवे तक, पहले से छठवे तक। हाँ अंत में ही लेना है, क्योंकि नरक में एक समय घटित करना है। मंजू बहन ख्याल में ही बात, ऐसा ऐसा नहीं आई तो नहीं कहूंगा।
और यहाँ पे वो भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रथम समय में विश्व युद्ध न हो जाती है।
ये तो सर्वत्र जयधवला में उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जयधवला में यही मत लिया है कि
प्रथम
काल में भी अनंतानुबंधी की विश्व योजना होती है। हमें तो पहले ये भी प्रश्न था। हाँ। और विश्व योजना होने के बाद फिर संयोजना भी होती है, दोनों ही लिया। नहीं मानेंगे टोडरमल जी, क्योंकि टोडरमल जी का इसके अनुसार ही है ना जयधवला के।
उनकी क्या मान्यता थी,
उन्होंने तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में तो
नहीं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में ऐसे नहीं पढ़ा था, ये धौला में हमने पढ़ा।
जयधवला जयधवला में ये पढ़ा है। तथा उत्कृष्ट काल वही है, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय है ना अनंतानुबंधी का। उत्कृष्ट काल वही है ने? बोलो,
33 साल।
33 साल वही है ना, एक समय नहीं है।
33 सागर।
अच्छा आगे लिखा है, अर्थात 33 सागर ही है।
ओ, अच्छा, मैंने ही पढ़ा था।
मैंने भी नहीं पढ़ा था। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब इनमें तो क्षपणा नहीं है, नारकी जीव है,
उद्वेला करने वाला नहीं।
परंतु सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल,
ये तो ये गुणित कर्मों से जीवन नहीं,
गुणित में इसका कोई संबंध नहीं है। आदेश से ही उत्कृष्ट बनाना है, तो
जो उत्कृष्ट करके यहाँ पे होते
कुत्ते वेदक वाला नहीं ले सकते
ने? नहीं, सम्यक्त्व का हो सकता है ना उत्कृष्ट।
यहाँ क्या लिखा है, उत्कृष्ट के स्वामित्व के अनुसार एक समय के लिए होती है। उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति उत्कृष्ट स्वामित्व के अनुसार लिखा है केवल,
ठीक है। गुणित कर्मांशिक जीव भी प्रथम अक्षम प्राप्त कर सकता है।
हाँ
तो वहाँ पे तो सत्ता कम ही हो जाएगी ना, गुणित कर्मांशिक की अपेक्षा जब भी प्रथम अक्षम प्राप्त करेगा तो उसकी सत्ता कम हो जाएगी सभी जीव की। तो गुणित कर्मांशिक जीव सम्यक तो
प्राप्त, हमें मैक्सिमम चाहिए, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति चाहिए।
नहीं नहीं, ये अपेक्षा से नहीं,
नारकियों में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति। देखो तो उसमें
सम्यक तो का तो होगा ना, जो उत्कृष्ट करके जाओ यहाँ पे जन्मा पहले नरक में, उसका उत्कृष्ट प्रदेश हो सकता है।
समय को समय छठी पुस्तक है। समय मिथ्यात्व 95 में अभी हमने कौन सा देखा था। हाँ 88 अरे वाह, ये तो नहीं जी, समय मिथ्या तो समय, परंतु ये तो ओघ में बता दिया उन्होंने आदेश में, क्योंकि ओघ का तो हमें पता है। उन्होंने अलग से बताया है क्या? देखो ये जो है ना आदेश सामान्य मनुष्य, अच्छा 119 उसके पहले आजू बाजू में कहीं होगा, 116 आदेश में मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर, आदेश में नरक गति में 116। आदेश से नरक गति में नारकियों में वो मिथ्या तो होनी चाहिए, हमें सम्यक मिथ्या तो चाहिए चौथी लाइन में। सम्यक मिथ्या तो की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति किसके होती है? सातवें नरक के जिस नारकी के अंतर्मूर्त के बाद मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होगा होगा। गुणित कर्मोशी कब घटित करते हैं? नारकी के अंतिम समय में, उस जीव के वह विपरीत जाकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर गुण संक्रमण के उत्कृष्ट काल के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व का संचय कर।
ये 28 की सत्ता वाला लिया है,
अभी अभी उसने प्राप्त किया ना। गुण संक्रमण कब होगा?
वेदक,
वेदक वाला नहीं करेगा, प्रथम उपशम वाला ही गुण संक्रमण करता है। प्रथम उपशम सम्य दृष्टि जीव ही गुण संक्रमण करता है, उपशम समय के छोटे अंतर्मूर्त काल तक शुरू शुरू में, वो गुण संक्रमण काल का अंतिम समय लेना है, क्योंकि उसमें कितना असंख्यात्व भाग, असंख्यात्व भाग मिथ्यात्व के जितने परमाणु है उसका असंख्यात्व भाग, असंख्यात्व भाग सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप से परिणाम आता है। प्रदेशों की बात चल रही है ना, स्थिति की बात नहीं है। वो तो सूक्ष्म सम्यक स्थिति के लिए
आगे लिखा है, उपशम सम्यक दृष्टि के उत्कृष्ट प्रदेश में प्रकृति होती है।
दर्शन मोह की तीनों प्रकृति में से एक का उदय गोविंद ऐसा होकर स्थित हुए उपशम सम्यक दृष्टि के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। ये ख्याल में आई ना बात? सातवें नरक में बाकी सारे अभी तक वो गुणित कर्मोशिक की बाकी सभी बातें पूरा करता आया है। अब गुणित कर्मोशिक होने वाला है अंतर्मूर्त में जाकर, ऐसा जीव लिया कि गुणित कर्मोशिक हो सकता था, उसके पहले क्या हुआ? यहाँ पर उसके औपशमिक समय को प्राप्त हुआ, उत्कृष्ट हुआ नहीं है, उसके होने जा रहे हैं उसके प्रदेशों में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अभी है ऑलरेडी, अंतर्मुद में जितना करने वाला था वो नहीं हुआ है, परंतु अधिलोहित उसके मैक्सिमम है मिथ्यात्व। अब उस मिथ्यात्व के उत्कृष्ट सत्वों में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति होने वाली है, ऐसा जीव लिया है प्रथम उपशम सम्यक्त्व के काल में। शुरू में जो गुण संक्रमण होता है अंतर्मुद के लिए वो अंतर्मूर्त का अंतिम समय लेना
सम्यक मिथ्यात्व के लिए,
सम्यक मिथ्यात्व के लिए,
सम्यक्त्व के लिए वो सपना वाला है।
अब आगे देखो, सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति किसके होती है? जो गुणित कर्मांश वाला जीव सातवीं पृथ्वी से निकलकर तिर्यंश के संख्यात भव में भ्रमण करके मनुष्य हुआ, सबसे लघु काल के द्वारा दर्शनों के क्षपण का आरंभ करके कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि होकर सम्यक प्रकृति की अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति शेष रहने पर नरकायु के बंध के वश से नारकियों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। हाँ, मैंने अभी बताया ना मुख्य, क्योंकि जो सम्यक पेज नंबर
116 17
पे आगे है दो लाइन,
ये पहले नरक में होगा ना?
हाँ, वो पहले नरक में होगा। नारकी मार्गणा अपने नारकी की, वहाँ सातवें नरक में नहीं घटित करना है, सातवें नरक में वो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट घटित करें। वहाँ वो गुणित कर्मवंशिक होने जा रहा था, बाकी कंडीशन अब तक वैसे ही फुलफिल की है, उसके बदले वो पहले ही ऑप्शन सम्यक दृष्टि हुआ, वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट लिया। और सम्यक्त्व का उत्कृष्ट गुणित कर्मवंशिक से आया है, सातवें नरक में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट किया उसने, फिर हाँ फिर तिर्यंश में नियम से जाएगा, फिर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, दर्शन मोनी की क्षपणा की, पूरी ने कृतकृत्य वेदक होकर मरकर नरक में गया।
वो भी अंतर्मुख पहले वो
कौन सा पहला समय?
हाँ
कृतकृत्य वेदक का पहला समय नहीं लेना है, क्योंकि पहले समय में मरने वाले देव में जाएंगे, बाद में मनुष्य में जाएंगे, बाद में तिर्यंश में जाएंगे, फिर भी अंतर्मूर्त शेष है उसका, ऐसा जीव लेना। हम एक अपेक्षा पकड़ने जाते हैं तो दूसरी छूट जाती है। तो उसका काल तो एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल 33 सागर है।
कि एक समय तो जिसने उत्कृष्ट
किया, उद्वेलना में भी हो सकता है ना,
एक समय में मर गया, एक्चुअली ना अनुत्कृष्ट का एक समय लिया,
उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट लेना है।
हाँ।
अब वो तो नहीं ले सकते, कौन सा वाला?
नहीं वो तो कृतकृत्य तो ले,
कृतकृत्य भी नहीं ले सकते हैं।
हाँ।
और यहाँ वाला जो है ना, आयु के अंत में उसने समय तो प्राप्त किया,
वो
भी नहीं ले सकते, क्योंकि गुण श्रेणी के बाद, गुण संक्रमण के बाद भी उसका उपशम समय तो
चला रहेगा।
तो उद्वेलना वाला ले सकते है ना, नरक में आके एक समय में उद्वेलना पूरी कर दी, उसका अनुत्कृष्ट था।
हाँ, एक समय में सत्ता
में शपित कर्मोशिक वाला, या और उसने हमने क्या देखा था, जघन्य ओघ में जघन्य किसके होगा, समय को समय मिथ्यात्व का, तो वो सारी कंडीशंस पहले क्षपित कर्मोशिक करके दो बार छात्र सागर, फिर मिथ्यात्व में जाएगा, उद्वेलना करेगा अंतिम समय में। अब यहाँ तो हम ऑर्डिनरी कोई भी जीव ले सकते ना, उद्वेलना करते करते नरक में जन्म हुआ, एक समय में उद्वेलना
कंप्लीट हो गया, सत्ता में थी,
ने एक समय के लिए सत्ता थी, तो उसके अनुत्कृष्ट एक समय होगा, और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, अनुत्कृष्ट 33 सागर तक, क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि जन्मा है वहां पर, बीज में समय को प्राप्त करे या न करे, 33 सागर तक सत्ता बनी रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे पल्ले के असंख्या तो भाग तक रहती है ना, क्यों नहीं रहेगी? 33 सागर तक सादी मिथ्या दृष्टि नरक में रहेगा कि नहीं रहेगा? मिथ्या तो में ही नहीं, भानो बहन को बोलने दो,
सत्ता की बात
कोई भी दोनों की ले, क्यों नहीं रहेगी? हाँ पल्ले का तो सतत नहीं रहेगी, तो बीच में वो समय को प्राप्त करेगा, फिर मिथ्यात्व में आएगा। हाँ एक बार करे तो पल्ले के असंख्या तो भाग तक तो रह सकता है ना, या ऐसा भी करेंगे ना, सादी मिथ्या दृष्टि आया है,
सत्ता वाला
समय दृष्टि तो रह सकता है लगातार लंबे काल तक,
अंत में जाके मिथ्यात्व में गया है,
रह सकता है। तो उत्कृष्ट काल 33 अगर पूरे लिए, सादी मिथ्या दृष्टि आया है, सादी मिथ्या दृष्टि आया
28 के सत्ता वाला
है, यहाँ पर आके समय को प्राप्त किया है, 33 सागर तक तो रहा अंतर्मूर्त, पहले वो मिथ्यात्व में गया तो सत्ता रहेगी
उसकी।
क्या में आई ना बात? दोबारा सुनना पड़ेगा,
समझ लेना अच्छा, नहीं तो वापस क्वेश्चन आ जाता है ना।
हाँ सारी मिथ्या दृष्टि में भी है और सम्यक दृष्टि लगातार लंबे काल तक रखो, लगातार मिथ्या दृष्टि, हाँ लगातार लगातार मिथ्या तो मैं तो इतना नहीं रह सकता क्योंकि उसकी उद्वेलना पूरी हो जाएगी। देखो अकेले नरक में भी कितने बार समय को प्राप्त कर सकता है, शक्ति सागर की यदि आयु है तो। विशेषण नहीं, अनुत्कृष्ट नहीं पढ़ा ना हमने वेदों का, तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, नारकियों में वेदों की बात है।
या तो ये जो उद्वेला का काल जो हम लोग देख रहे हैं वो भी अद्धापल्य में है ना, पल्य का संख्या ज्यादा।
हाँ अद्धापल्य में ही होता है ये, जहाँ कोई पल्य और सागर के पीछे विशेषण नहीं लगाया है
वो अद्धापल्य,
वो सारे अद्धापल्य समझना, अद्धा सागर समझना, क्योंकि यूजुअली कर्मों की स्थिति और नारकी देवों की आयु ही नापते हम,
अद्धापल्य
में ही होती है। आप शाम को नहीं आती है ना, अभी हमारे तीन प्रकार के पल्यों की चर्चा चल रही है, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धापल्य। ये अद्धापल्य तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल
10,000
एक समय कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। अनुत्कृष्ट का कैसे कम किया, एक समय के लिए उत्कृष्ट है
और
फिर अनुत्कृष्ट
होगा जगन्य काल के लिए।
विशेषण सामान्य से नारकियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 6 नौ कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति सातवें नरक में आयुबंध से पूर्व अंतिम समय में होती है, इसलिए इसका जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। अभी बाद में अंतर्मूर्त गठित करना है ना, इसलिए यहाँ पर लिया उसको। तथा उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के बाद नरक भव में जो अंतर्मूर्त काल शेष बचता है वह इन कर्मों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य काल है और इसका उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33 सागर उस नारकी को होता, नारकी के होता है जिसके उस पर्याय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति नहीं होती, यानी शुरू से अंत तक अनुत्कृष्ट ही रहती है। यही कारण है उक्त कर्मों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल 33 सागर कहा है। ये उत्कृष्ट अंतर्मूर्त पहले घटित होता है तो उसके पश्चात अनुत्कृष्ट अंतर्मूर्त घटित होता है। नहीं समझे, मिथ्यात्व
16
कषाय और
6 नौ
कषाय कहाँ घटित किया है, आयु के अंत में नहीं, अंतर्मूर्त पहले घटित किया है तो उस समय के बाद जो अंतर्मूर्त बचा है वह अनुत्कृष्ट घटित किया। जो अनुत्कृष्ट के साथ ही सातवें नरक में आए हैं उसके पूरे लगातार 33 सागर वो अनुत्कृष्ट है, क्योंकि गुणत कर्मावशिक में वो भी अंत में जाके उत्कृष्ट घटित किया था। सभी जीवों को ऐसा नहीं है, बाकी सभी जीवों के लिए अनुत्कृष्ट है। मात्र अनंतानुबंधी चतुष्क की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय भी बन जाता है। अभी हमने देखा था ना
सागर वाला,
वो
सागर में
प्रथम उपशम करता है, विसंजना करता है, सागर में आता है, एक समय में मरता है। उसके लिए 6 नरकों में बात करेंगे, सातवें नरक में तो नहीं होता ये बात। देखो अनंतानुबंधी की बात, इसलिए कारण सहित इस काल का निर्देश अलग से किया है। यहाँ अनंतानुबंधी चतुष्क की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के जघन्य काल का निर्देश करके उक्तम चैव कहकर उत्कृष्ट काल भी कह दिया है, पर इससे यह मिथ्यात्व आदि की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के उत्कृष्ट काल से अलग है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अन्यथा तम चैव पद देने की कोई सार्थकता नहीं थी। यानी अनंतानुबंधी के अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल कितना है,
33
सागर मिथ्यात्व के समान। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति उत्कृष्ट स्वामित्व के अनुसार एक समय के लिए होती है, इसलिए इसका जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा जो जीव अपनी अपनी उद्वेलना के अंतिम समय में नरक में उत्पन्न होता है, ये लिखा है। देखो एक समय की बात हमने ऐसी घटित की थी, उसके वहां इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति एक समय तक देखी जाती है। अतः इन दोनों प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कहा है। इसका उत्कृष्ट काल 33 सागर है, यह स्पष्ट ही है। तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति नरक में उत्पन्न होने के प्रथम समय में संभव है। हमने देखा था ना, नपुंसक वेद का ईशान में करता है, फिर भी
मनुष्य
यथा योग्य चला जाएगा, मनुष्य तिरेंस में आकर नरक में चला जाएगा। या वो स्त्री वेद वाला कहा, हमने देखा भोग भूमि में, वहां से देव की आयु करेगा, एकाद तिरेंस करेगा, फिर नरक में जाएगा। इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, यानी नारकी होने के पहले समय में। वो कौन से नरक में जाता है उससे कुछ मत कर नहीं। तथा नरक की जघन्य स्थिति में से इस एक समय को कम कर देने पर जघन्य स्थिति कितनी है नरक की?
10,000
वर्ष में एक समय कम कर दो तो अनुत्कृष्ट का जघन्य होगा। तीनों वेदों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम जघन्य आयु प्रमाण होता है, और इसका उत्कृष्ट काल नरक की उत्कृष्ट आयु प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। अब आगे, पहली पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल प्रथम पृथ्वी में एक समय कम 10,000 वर्ष है, क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट का शब्द पहले समय में होगा, उत्कृष्ट के साथ आया है, इसलिए वो पहला समय छोड़ के बाकी अनुत्कृष्ट होगा। शंका पूछे ना, एक समय कम क्यों है? क्योंकि वहां उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही उत्कृष्ट सत्व होता है। शेष पृथ्वियों में उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण है। पहली पृथ्वी में तो एक समय कम 10,000 वर्ष, आगे आगे की जितनी वहां की जघन्य आयु है उसमें से एक समय कम करना, और उत्कृष्ट काल 6 में अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय है, पहले जैसे घटित किया। अनंतानुबंधी के लिए तो लास्ट में शासाधन में भेज देना,
सातवीं पृथ्वी में घटित हुआ,
और ये समय को समय मिथ्यात्व का उद्वेलना वाला लेना। सातवीं पृथ्वी में सामान्य नारकियों के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल 22 सागर है। उत्कृष्ट काल 33 सागर है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।
या अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल 22 सागर के लिए।
22 सागर। हाँ हाँ। ऊपर कितना है? 22 सागर उमण है। देखो को स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के।
सातवें नरक की जगह नहीं
आई बराबर 22 साल प्लस एक समय हाँ। एक समय घटा दी
हाँ। तो जगह ने आयु में से एक समय कम,
जगह ने आयु में से एक समय कम। और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। अनंत अनुबंधी चतुष्क की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।
अनुत्कृष्ट का अंतर
गुणित कर्मावश्यक लेना है हाँ। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है। अनंत अनुबंधी में ऐसे भी हम दो विसंयोजना के बीच में भी घटित कर सकते हैं इसको। तो कहते एक समय क्यों नहीं है,
सासादन गुणस्थान
क्योंकि सातवीं पृथ्वी से सासादन गुणस्थान के साथ निर्गमन नहीं होता, यानी वहाँ सासादन में कोई मरता नहीं है। तथा उत्कृष्ट काल 33 सागर है, सातवें नरक के लिए बात चल रही है। और विशेषार्थ कल पढ़ेंगे। जावानी के